ఆచారదత్తం జలజం మహాసనం. దదనో ప్రజున్న భయమింద్రయోషితాం.
తాం దేవదానిం శబరోతినీపతిః బహిః సమంతాదరురుధే పృతన్యయా. ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం. దదమౌ ప్రియుంజన్ భయమింద్రయోషితాం.
బహి సమంతాదరురుధే ప్రతన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం. దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితాం.
తం దేవధానిం స్వరూపినీపతిః బహి సమంతాదరురుధే పృతన్యయా. ఆచార్య దత్తం జలజం మహాసనం. దద్మౌ ప్రయుజ్ఞ భయమింద్రయోషితాం.
బహి సమంతాదరుర్ధే ప్రతన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
దద్మో ప్రయుజ్యన్ భయమింద్రయోషితాం.
దద్మో ప్రయుజ్యన్ భయమింద్రయోషితాం.
బహి సమంతాదరురుధే ప్రతన్యయా.
సమంతాదరురుధే ప్రతన్యయా.
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితాం.
దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితాం. తాం దేవధానిం స్వరూపినీపతిః
బహిర్సమంతాననురుధే ప్రతన్యయా.
బహిర్సమంతాదరురుధే ప్రతన్యయా.
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం.
దద్మో ప్రయుజన్మ భయమింద్రయోషితాం.
ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితాం.
తాం దేవధాని స్వరూపినీపతిః బహి సమంతాదరురుధే ప్రతన్యయా. ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం. దద్మో ప్రయుజ్యన్ భయమింద్రయోషితాం. దేవధానిం సవరూధినిపతి బహి సమంతాదృరుదే పృథన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితా తాం దేవదానిం సవరూథ నీపతి బహి సమంతారురుదే ప్రతన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రయోషితం తాం దేవధానిం సవరూథినిపతి బహి సమంతాదృరుథే ప్రతన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్రియోషితా
తాం దేవదానిం సవరూథినిపతి బహి సమంతారురుధే పృతన్యయా ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మౌ ప్రయుజన్ భయమింద్రయోషితాం తాం దేవధానిం సవరూథినిపతి బహి సమంతాదృరుధే పృతన్యయా
ఆచార్య దత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మో ప్రయుంజన్ భయమింద్ర యోషితాం
ताम उस अतिशय समृद्ध देवधानी देवताओं के निवास स्थान अमरावती को सह वे बलि महाराज बरूथिनी पति है सेनापति बही है बाहर से समंता सब ओर से रुरुधे घेर लिए प्रतन्यया सेना द्वारा आचार्य दत्तम शुक्राचार्य के दिए हुए जलजम शंख को महास्वनम इसमें बहुत भयावह आवाज निकलती थी दधमौ बजाए प्रयुंजन उत्पन्न करने के लिए भयम भय इंद्रजोषितां, इंद्रपुरी में रहने वाली स्त्रियों के कल स्वर्ग का वर्णन किया जा रहा था। इसके साथ ही यह बात बताई गई कि वास्तव में स्वर्ग अनित्य है, वहां का जो भोग है उसको एक दिन छोड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग सुख को धिक्कार है। स्वर्ग सुख आत्मा के लिए नहीं है। इस घटना को इस इतिहास द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। देवता बड़े आनंद में रहते हैं स्वर्ग में, स्त्रियां आनंद में रहती हैं, सभी चिरंजीवी रहते हैं, बहुत काल तक जीवित रहते हैं, सुखी रहते हैं, रोगहीन, और गीत नृत्य वाद्य आदि का आनंद लेते रहते हैं। तो ऐसी देवधानी पर, राजधानी पर बलि महाराज ने आक्रमण किया, घेर लिया चारों तरफ से। देवता देवियां सब आनंद में हैं, परंतु अकस्मात उनके ऊपर भय आ गया। बलि महाराज को बरुथनी पति सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। बरुथनी का अर्थ है सेना, पति मतलब पालक, स्वामी। बलि महाराज बहुत बड़ी सेना के नायक थे, तो उन्होंने देवधानी को चारों तरफ से घेर लिया। जहां राजा रहता है उसको राजधानी कहते हैं, और जहां देवता रहते हैं उसको देवधानी कहते हैं। अमरावती को देवधानी कहा जाता है। तो उस देवधानी को, देवताओं के निवास स्थान, उस नगरी को जिसे इंद्रपुरी भी कहते हैं, महाराज बलि ने बहुत बड़ी सेना द्वारा वही समंता चारों तरफ से घेर लिया। जितने भी फाटक थे अमरावती के, सभी द्वारों पर, फाटकों पर सेनाएं जुट गई, चारों तरफ से घेर लिए, कहीं भी निकलने की जगह नहीं थी। और घेर करके उन्होंने एक महास्वनम संखम, महास्वन, स्वन का अर्थ ध्वनि, जिसमें बहुत भयावह और बहुत जोर की ध्वनि निकलती थी, ऐसे अपने शंख को चुनौती के रूप में उन्होंने बजाया। पहले युद्ध में शंख वादन द्वारा चुनौती दी जाती थी। आप सब पढ़े हैं भगवद गीता में कि जब दोनों ओर से शंख वादन हो गया, तब अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि दोनों सेनाओं का हम निरीक्षण करें, कौन कौन लोग मुझसे लड़ने आए हैं, खास करके दुर्योधन के पक्षपाती कौन राजा लोग आए हैं। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह ने शंख बजाया था दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद बहुत बाजे बजे कौरव पक्ष में, कई प्रकार के बाजे और शंख भी, लेकिन संजय जी कह रहे हैं सौ शब्द तुमलो भवत, वह शब्द वो तुमुल हुआ, गंभीर हुआ, पर पांडव पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पांडव पक्ष से सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया, और अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज आदि, भीमसेन, नकुल, सहदेव और भी जो सेना नायक थे अपने तरफ के, वे सब शंख बजाए। संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज से, सौ घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानी वेदारयत। धृतराष्ट्र महाराज से ही कथा कही जा रही है कि हे महाराज, जब पांडव पक्ष का केवल शंख नाद हुआ तो सघोष, वह ध्वनि, वह घोष धृतराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का कलेजा फाड़ दिया। धृतराष्ट्र से ही कथा कही जा रही है। ये अजीब शास्त्र की शैली है। धृतराष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारे, धृतराष्ट्र के पुत्रों का या धृतराष्ट्र के सैनिकों का वो हृदय दहला दिया, फाड़ दिया मतलब दहला दिया, और उनमें लड़ने का उत्साह नहीं रह गया, केवल शंख वादन। तो शंख वादन युद्ध में एक चुनौती के रूप में प्रयुक्त होता है। बलि महाराज शंख बजाए, देवताओं को उन्होंने चुनौती दिया, जो बेचारे भोगों में लगे हुए थे, बड़े आनंद में थे, उनके जीवन में अकस्मात विपत्ति आ गई। इस प्रकार का शब्द शंख का देवराज इंद्र ने कभी नहीं सुना था। वे अनेक युद्ध जीते थे, सब अश्वमेध जग करने वाला व्यक्ति कितना युद्ध किया होगा ये सहज समझा जा सकता है। इंद्र का पद कोई साधारण पद नहीं है, बहुत महान पद है। वास्तव में इस प्राकृत जगत में ब्रह्मा जी के बाद मैनेजमेंट में सबसे जो प्रधान व्यक्ति हैं वो हैं इंद्रदेव। सबसे समृद्ध स्थान उनको दिया गया है और बहुत युद्ध करके तब इंद्रपद मिलता है। सौ अश्वमेध जग करने में भी युद्ध होता है, राजाओं को हराना पड़ता है। तो इंद्रदेव बहुत शंख वादन सुने थे, बहुत चुनौतियां सुने थे, लेकिन इतना भयावह शब्द शंख का वे कभी नहीं सुने। बलि महाराज पर विशेष कृपा थी शुक्राचार्य जी की, ब्राह्मणों के, और भजन करते थे, भगवान की भक्ति में थे, इसलिए उनका तेज बहुत बढ़ गया था। तुरंत अपने गुप्तचरों से या जैसे तैसे अपनी शक्ति से, योग शक्ति से, भगवान इंद्र समझ गए कि यह बलि का शंखवादन है, जिस बलि का उन्होंने वध कर दिया था देवासुर संग्राम में, समुद्र मंथन के बाद वध कर दिए थे, पूरा राज छीन लिए थे और सब कुछ, पर इतना पराजित व्यक्ति भी एक दिन अपनी तैयारी करके और अमरावती पर चढ़ बैठ, देवताओं के नगर में देवताओं को चुनौती दे रहा है। वास्तव में इस संसार में कुछ कहा नहीं जा सकता कब कर्म का चक्र उलट फेर करेगा, कोई ठीक नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तपस्या में रहे, भगवान की भक्ति में रहे, समय बदलता रहता है। जो व्यक्ति मारा गया था, जान से मारा गया था, जिसका धन छीन लिया गया था, जिसके अनेक सैनिक मारे गए थे, बुरी तरह से पराजित हुआ था, वह व्यक्ति आकर के इंद्र को ललकार रहा, उनके नगर में आकर के, कोई दूर से नहीं। मघवांस्तम अभिप्रेत्य बले परम मुद्यमम सर्वदेव गणों पे तो गुरु में तद उवाच। शंख क्यों बजाया बलि महाराज ने? विशेष करके इंद्र लोक की स्त्रियों का हृदय दहलाने के लिए। वे स्त्रियां जब डरेंगी तब वे बड़े बड़े देवताओं को, अपने पतियों को प्रेरित करेंगी कि आप लोग जाइए युद्ध कीजिए, युद्ध करने आएंगे देवता लोग। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि प्रयुंजन भयम इंद्र जोशिता, इंद्र की स्त्रियों, पत्नियों अर्थात स्वर्ग की स्त्रियों को भयभीत करने के लिए बलि महाराज ने शंख वादन किया। केवल एक शंख बजा और सेना के कोई लोग नहीं बजाए, केवल बलि महाराज ने बजाया। इसीलिए जलजम एक वचन शब्द का प्रयोग, एक शंख बजाया। तो मघवान स्तम अभिप्रेत्य, मघवान जो संपूर्ण स्वर्ग संपत्ति के मालिक हैं, अधिष्ठाता हैं, वे इंद्रदेव तुरंत समझ गए कि यह बलि का शंख वादन है। और बलि ने इतनी तैयारी कर लिया, इतना तेज बढ़ गया इनका, जान गए सब तरह से, पता लगा लिए कि बलि का यह शंख वादन है और उनका अपार तेज बढ़ा हुआ है, उनके सामने लड़ने का साहस करना ठीक नहीं है। तो वे सभी देवताओं को बुलाए, एक मीटिंग किए और मीटिंग के बाद सारे देवताओं के साथ इंद्रदेव अपने गुरु की शरण में गए। गुरु में तद वास, सारे देवता गए थे, यह नीति है। अब इस विपत्ति के समय गुरु ही सहारा होगा। अब बृहस्पति जी वैसे भी देवताओं के गुरु हैं और बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, तो इस संकट के समय गुरु ही उचित बुद्धि बताएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो सभी देवताओं के साथ इंद्रदेव गुरु जी बृहस्पति जी की शरण में गए। सर्व देव गणों पे तो, सभी देवताओं के साथ क्यों गए? क्योंकि किसी न किसी के स्नेह से गुरु जी पिघल जाएंगे, तो सब गए, सबकी दुर्दशा दिखानी है कि दुर्दिन आ गया, तो सारे देवताओं के साथ गए और गुरु जी से यह कहे। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किए, प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर के उनसे कुछ कहे। भगवान उद्यमो भूयान बलेर्न पूर्व वैरिण अविश्वाहिमी मम मन्ये केनासी तेजसोर्जित। हे भगवान, गुरु को सबसे पहले भगवान संबोधन कर रहे हैं। हे भगवान, बलि महाराज का जो इमम पराक्रमम, ये जो पराक्रम है, इनकी जो युद्ध की तैयारी है, भूयान, भूयान का अर्थ बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इसका अर्थ है कि हम लोगों में जो युद्ध की सामर्थ्य है, या हमारी जो सेना है, इसे कई गुना पावर, कई गुना बल इंद्र का, बलि का बढ़ा हुआ है। इसको भूयान शब्द से कब बोल रहे हैं, और किस बलि का? न पूर्व वैरिण, जो हमारे पुरातन बैरी हैं, हमको हमेशा तंग करता रहता है बलि, पुराना वैर। तो हमने उनका वध कर दिया था, उसके पहले से ही वैर चल रहा है, परंपरा से ही वैर है, तो पूर्व वैर। यदि आज का वैर होता तो चलो ठंडा भी हो जाता, लेकिन लगातार लाखों करोड़ों वर्षों का वैर चल रहा है। ऐसा वैरी पूरी तैयारी करके और युद्ध का उपक्रम किया है, मैं तो इसको अविश्वाह्य मान रहा हूं। अविश्वाह्य का अर्थ है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है लड़ने की। लड़ने का मतलब है सीधा जान गंवाना। हम आपसे जिज्ञासा करते हैं, केनासित तेज सूर्जित, किस कारण से बलि का यह तेज बढ़ा हुआ है, क्या कारण है? अकस्मात कोई व्यक्ति इतना बलवान हो जाए, इसके पूर्व युद्ध में, देवासुर संग्राम में जो व्यक्ति मार दिया गया, अनेक सैनिक मारे गए, बुरी तरह से पराजित हुए, वह व्यक्ति क्या किया कि पुनः उसका बल तेज इतना बढ़ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान उद्यम भूयान बलेर्ना पूर्व वैरिणा अविश्वाह्य मम मन्ये केनासी तेजसोर्जित, किस कारण से इनका तेज इतना बढ़ा हुआ है? इंद्रदेव दूर से बलि महाराज को रथ पर चढ़े हुए देखे, तो वे सूर्य की तरह लग रहे थे, चमक रहे थे, इतना तेज बलि महाराज का बढ़ा हुआ था, भक्ति के कारण बढ़ा हुआ था। वास्तव में उन्होंने जो यज्ञ किया, दान दिया ब्राह्मणों को, और तपस्या में रहे, भोगों में बिल्कुल नहीं, निद्रा आहार आदि बिल्कुल संकुचित कर दिए थे, तपस्या से बल बढ़ गया था। आज तक संसार में देखा गया है कि भोग भोगने वाले की कभी कोई प्रशंसा नहीं हुई, तप करने वाले की प्रशंसा होती है हमेशा, और उसका तेज बढ़ता है। तो बलि महाराज का तेज किस कारण से बढ़ा हुआ है, इंद्रदेव अपने गुरु से जिज्ञासा कर रहे हैं। यदि मान लीजिए गुरु जी कहें कि ठीक है, अगर लड़ने के लिए आया है तो लड़ो, मान लीजिए अगर कहें तो भगवान इंद्र कहते हैं, नैनम कश्चित कुतो वापि प्रति वेढुम अधिस्वरः। मैं गुरु जी ये देख रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी बलि का प्रतिरोध कर सके, सामना कर सके, मैं नहीं देख रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं। न कश्चित और कुतः वा अपि, कोई भी व्यक्ति और कहीं का भी बलि से टक्कर नहीं ले सकता है, इतना तेज बढ़ा हुआ है। क्या तेज बढ़ा हुआ है, इसी का वर्णन कर रहे, पिबन निव मुखे ने जम निहन निव दिशो दस दहन। देवराज इंद्र अपने गुरु महाराज से बता रहे हैं कि पिबन निव मुखे नेदम लिहन निव दिशो दस दहन निव दिशो दृग्भि सांबर ताग निर्वथित। गुरु महाराज, बलि का इतना तेज बढ़ा हुआ है कि वे ऐसा लगता है कि अपने मुख से इस संपूर्ण विश्व को पी जाएंगे, ऐसी सामर्थ्य में दिखाई पड़ रही। पिबन्येव मुखेन एदम, मुखेन अपने मुख से पूरे विश्व को पी जाएंगे। और लिहन निव दिशो दशो, दसों दिशाओं को अपने जिह्वा से चाट जाएंगे। दहन निव दिशो दृग्भी, और अपने आंखों से संपूर्ण दिशाओं में वे आग लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब इतना प्रताप बढ़ा हुआ है। संबर तग्निरोथित, प्रलय कालीन अग्नि के समान उनका तेज बढ़ा हुआ है। संवर्तक अग्नि कहते हैं, इस विश्व का प्रलय करने के लिए जो अग्नि लगाई जाती है, वो अग्नि दो तरह से होती है। एक तो भगवान शंकरषण के 1000 फणों से आग निकलती है वह, और सूर्य का तेज 100 गुना बढ़ाया जाता है प्रलय काल में। ऊपर से भी आग लग जाती है, नीचे से भी आग लग जाती है, चारों तरफ ब्रह्मांड धधकने लगता है। भगवान के मुख से जो अग्नि निकलती है और सूर्य से अग्नि निकलती है, दोनों मिलकर ब्रह्मांड को जलाने लगते हैं, उसको संवर्तक अग्नि कहते हैं। तो जैसे संवर्तक अग्नि का तेज होता है, उस तरह का तेज बलि का है। तो बलि के सामने जा पाना भी कठिन है, युद्ध करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो किस कारण से इनका तेज बढ़ा हुआ है? ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धत्वस्य अस्य मद्रिपः, ओजः सहो बलं तेजो जत एतत् समुद्यमः। कृपा करके बताइए, ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षवत्यस्य, ये बलि महाराज इतने दुर्धर्ष हो गए हैं कि इनके पास किसी का जाना भी कठिन है, और जो हमारे शत्रु हैं मद्रिपः, मेरे शत्रु बलि का यह इतना तेज कि उनके सामने कोई जा भी नहीं सकता है, क्या कारण है? ब्रूहि कारण में तस्य, मैं देख रहा हूं कि इनके इंद्रियों की स्फूर्ति बढ़ी हुई है। ओज कहते हैं आंख के देखने की शक्ति, कान के सुनने की शक्ति, पैर में चलने की शक्ति, हाथ की शक्ति। ओज सहो मनोबल, इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने घर से आ जाना देवधानी में, अमरावती में, और यहां आकर के हम लोगों को ललकारना, कितना बड़ा मनोबल है इस व्यक्ति का। सह और बलम, शारीरिक बल, इनका शारीरिक बल बहुत बढ़ा हुआ है। तेज, दूसरे को अभिभूत करने की, हराने की सामर्थ्य जो है, उसको तेज कहते हैं। और जिसे बढ़े हुए ओज सह बल और तेज के कारण इनका ये एतत् समुद्यम, ये जो समुद्यम है, युद्ध का उद्योग है, बढ़ा हुआ है। तो मैं कारण जानना चाहता हूं किस कारण से इनका तेज बढ़ा हुआ है। देवता सभी घबरा करके अपने गुरु से ये बात पूछ रहे हैं। देवताओं का ये स्वभाव है, जब कोई भी संकट पड़ता है तो देवता लोग या तो ब्रह्मा जी को पुकारते हैं, ब्रह्मा जी से मिलते हैं, या डायरेक्ट भगवान की शरण लेते हैं, अथवा अपने गुरु महाराज से कंसल्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय। तो गुरु महाराज ने सीधा कहा कि मघवन जानामि मघवन क्षत्रोरुनत्ते रस्य कारणम शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभिर् ब्रह्मवादिभिः। जानामि, सबसे पहले गुरु महाराज कहते जानामि मघवन, हे समस्त स्वर्ग संपत्ति के स्वामी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शत्रु के उन्नति का क्या कारण है। अस्य शत्रु हो उन्नते है कारण जानामि, उन्नति उत्नति मतलब आगे बढ़ने का, विकास करने का कारण क्या है, इसको मैं जानता हूं। क्या कारण है? अकस्मात बलि का तेज इतना बढ़ गया, उसका क्या कारण है? शिष्यालोक भृतम तेजो भृगुहि ब्रह्मवाद भी, वेद के अनुसार जीवन जीने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपने ही तेज को बलि को दे दिया है, अपना तेज उपभृतम। ऐसा हुआ कि जब बलि महाराज ने सब तरह से अपने गुरुजनों की सेवा किया, विशेषकर शुक्राचार्य की सेवा किया, अपना शरीर अर्पण किया, अपना पूरा धन अर्पण किया, अपना सर्वस्व अर्पण किया, तो श्रीपद शुक्राचार्य इतने कृतज्ञ हुए, उन्होंने कहा कि बलि यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने हमें दे दिया, तो हमारे पास जो कुछ भी है मैं तुमको दे रहा हूं। एक प्रकार से प्रतिदान के रूप में ब्रह्म तेज दिया इनको। कहां से तेज इतना आया? ब्राह्मणों में। ब्राह्मणों में तेज इसलिए आया कि ब्रह्मवादी भी। वास्तव में ये जो भृगुवंशी ब्राह्मण है ये सब भगवान के भक्त हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान मुख्य रूप से। तो ब्रह्मवादी का अर्थ है जो भगवान की ही बात करते हैं और वेद के अनुसार बोलते हैं, उनको ब्रह्मवादी कहते हैं। इस ब्रह्मवादी शब्द के ठीक विपरीत शब्द है मायावादी। मायावादी वैसे तो स्पेशल अर्थ में ये भाव है कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान विष्णु के शरीर और धाम परिकर लीला आदि को माया का विकार कहते हैं, प्रकृति का विकार कहते हैं, उनको मायावादी कहते हैं। परंतु जनरल अर्थ में मायावादी का अर्थ है जो केवल माया की बात बोले। दुनिया के जितने भी है टीवी देखने वाले अखबार पढ़ने वाले सब मायावादी हैं, केवल यही चर्चा करते रहते हैं। संसारिक चीज जहां जाइए वहां पर उस शहर का न्यूज निकल रहा है, उस शहर का न्यूज वहां निकल रहा है, दुनिया की यही बातचीत होती रहती है। क्या हुआ क्या हुआ, ज्यादातर क्या लूटपाट, क्या हिंसा, और कौन मिनिस्टर किस कांड में पकड़ा गया, ये सब यही दुनिया को बताना है। इसको मायावादी कहते हैं, माया की बात करे तो माया की बात करने वालों का तेज घट जाता है, उनमें वो तेज नहीं रह सकता। लेकिन जो लोग भगवान की बात करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में रहते हैं, वेद के अनुसार जीवन जीते हैं, वेद के अनुसार भगवान का गुण गाते हैं, तो उनको ब्रह्मवादी कहते हैं। भृगुवीर ब्रह्मवादी भी, भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य आदि ये ब्रह्मवादी थे, हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहते थे। इस कारण से इनमें तेज बहुत बढ़ गया था और बलि महाराज की सेवा से प्रसन्न होकर इन गुरुजनों ने अपना तेज उनको दिया था प्रतिदान के रूप में। शुरू में आपने सुना था कि बलि महाराज सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि, भृगुवंशियों की सेवा किया बलि महाराज ने अपना पूरा पूरा धन लगा करके और शरीर लगाकर मन लगा करके किया। तो उन्होंने प्रतिदान में इनको जीवन तो पहले दिया ही था गुरुओं ने, बाद में ब्रह्म तेज दिया। गुरु उस ब्रह्म तेज के आगे देवता सभी घबराए हुए। बलि महाराज के तेज के बढ़ने का कारण यह था। वास्तव में भगवान भगवत भक्तों की यदि कृपा होती है तो उससे व्यक्ति को अद्भुत उपलब्धि होती है, सब तरह से, संसारिक भी और पारलौकिक भी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मवादियों की सेवा करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, यदि जीवन में उन्नति चाहिए तो। यहाँ पर बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जानामि मघवन शत्रु उन्नते रस्य कारणम् अस्य तव शत्रु, तुम्हारे शत्रु के उन्नति का कारण मैं जानता हूं। केवल एक ही कारण है, शिष्यायोपभृतम तेजो, अपने शिष्य में भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना तेज दिया है, अपने पास उनका जो भी गुण था इनको समर्पित किया है। तो इस दशा में भवद विभो भवान वापी वर्जयिते स्वरम हरिम नाश सक्त पुरस्थातम कृतं तस्य जथा जना। वे कह रहे हैं कि हे इंद्र सुनो, भवत विधो तुम्हारे जैसा या स्वयं तुम कोई भी व्यक्ति बलि महाराज के सामने वैसे ही नहीं टिक सकता है जैसे काल के सामने कोई प्राणी नहीं टिक सकता है, उसको मरना ही पड़ता है। कृतांत के सामने, मृत्यु के सामने जैसे कोई प्राणी टिक नहीं सकता, वैसे तुम्हारे जैसा कोई भी भवत विधो या भवानवापी या आप भी, आप या आप जैसा कोई भी बलि के सामने टिक नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि यदि मरना हो तो सामने जाओ। आज तक मृत्यु के सामने कोई भी प्राणी टिक नहीं पाया है, उसे मरना पड़ा है। इसी तरह बलि के सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता है। तो इस पर प्रश्न होगा, मान लीजिए इंद्र भगवान पूछे, तब तो वही ईश्वर हो गया, देवराज इंद्र अगर पूछें कि तब तो बलि ही ईश्वर हो गए, वही भगवान हो गए, तो श्रीपद शुक्राचार्य कितने सावधान है, कहते हैं वर्जयित्वे स्वरम हरिम, वर्जयित्वा ईश्वरम हरिम, केवल परम ईश्वर भगवान हरि को छोड़ करके और कोई नहीं टिक सकता, मतलब केवल हरि टिक सकते हैं बलि के सामने। वर्जयित्वा हरिम ईश्वरम, ईश्वरम हरि, वास्तव इस जगत के समस्त जीवों के नियामक, जन्मदाता और संयम में रखने वाले भगवान हरि है। हरि उनको इसलिए कहते हैं कि भक्तों का दुख हर लेते हैं, भक्ता नाम दुखम हरति इति हरि, जो भक्तों का दुख हर लेते हैं विष्णु, वे काल से अतीत है, काल उनसे डरता है, मृत्यु उनसे डरता है, ये काल का अधीन नहीं है। लेकिन बृहस्पति जी कह रहे हैं कि एक विष्णु को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके और कोई भी व्यक्ति बलि के सामने वैसे ही नहीं टिक सकता है जैसे कृतांत के सामने कोई जना है, जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जीव नहीं टिक सकता, कोई प्राणी नहीं टिक सकता। तब तो भगवान इंद्र और घबरा के कहने लगे तो क्या उपाय किया जाएगा, क्या उपाय किया जाएगा जीने के लिए और इसको हराने के लिए। तो श्रीपद बृहस्पति जी कहते हैं सुनो, जीतने की बात तो छोड़ो, अगर जीना चाहते हो तुम लोग, केवल जीने के लिए मैं उपाय बता सकता हूं इस समय। तस्मान् निलयम् उत्सृज्य योजम सर्वे त्रिविष्टपम् जात कालम प्रतीक्षन्तो जतः शत्रु विपर्ययः। जब इंद्रदेव ने पूछा कि गुरु महाराज तो इदानीम अस्मत् किम कर्तव्य, इस समय हम लोगों का क्या कर्तव्य, हम लोगों को क्या करना चाहिए बताइए, तो बृहस्पति जी कहते हैं कि इस समय कर्तव्य यही है, इस कारण से जब सामर्थ्य नहीं है लड़ने की, तस्मात त्रिविष्टपम उत्सृज्य, स्वर्ग को छोड़कर जीवम सर्वे, सर्वे एक एक बच्चा या पत्नी या स्त्रियां या कोई भी सभी तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर के निलयम जाता, छिप जाओ, अदर्शन को जाओ, मतलब छिप जाओ, छोड़ो, छोड़ो स्वर्ग को। उन्हें पूछा कि कब तक छोड़ेंगे स्वर्ग को, कब तक बाहर रहना पड़ेगा, जातक कालम प्रतीक्षा, तुम लोग अदर्शन को जाओ, छिप जाओ और उस काल की प्रतीक्षा करो जब शत्रु का विपर्यय होगा, विपरीत स्थिति आएगी, जगह सब पराभूत भविष्यति, जब वो पराभूत होगा उसका समय आएगा, सबका समय आता है उठने का गिरने का, तो जब उसके हारने का समय आएगा उस काल की प्रतीक्षा करो, बस जाओ अब हरे कृष्ण जपते रहो और उस समय की प्रतीक्षा करो। गुरु जी ये बता रहे हैं तुम्हें भगवान के भक्त हो ही, भक्ति करो, अब प्रतीक्षा करो कि कब अपना समय आता है और उस असुर के पराभव का समय आता है। इस समय क्या किया जाए, इस समय यही कर्तव्य है कि स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। देवताओं में शक्ति थी, वे छोड़कर भाग सकते, चारों तरफ से घेरे गए थे, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप बना करके मच्छर जैसा छोटा इधर उधर कहीं भी वो भाग सकते थे। तो वे लोग सब आपस में परामर्श किए, तुरंत स्त्रियों से और सबसे और अदृश्य हो गए। इसके पहले वो लोग प्रश्न करते हैं तो बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ यही उपाय है कि स्वर्ग छोड़ दो। स्वर्ग छोड़ने का मतलब घर छूटा और वह विमान, अनंत कोटि जो विमान था वो सब छूटे, विमान वो बगीचा, वो खान पान, अमृत पीना और सब ऐश आराम सारा खाया एक क्षण में। ऐसा नहीं था कि जाते तो अमरावती को उठा करके ले जाते, कितना भी अच्छा फ्लाइट रहा होगा लेकिन अब छोड़ना है, छोड़ देना पड़ा, बिना युद्ध के अपने आप बलि के प्रताप से छोड़ना पड़ा। तो फिर भी इंद्रदेव ने पूछा कि आखिर इतना उर्जित पराक्रम है बलि, तो उसका कब पराभव आएगा? हम तो नहीं समझते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा कि बलि को पराभव का मुंह देखना पड़ेगा, वो हारेगा, कभी ऐसा तो हम नहीं देखते। तो बृहस्पति जी ने बताया, नहीं है उपाय, देखो ऐसा विप्रबल उदर का संप्रत उज्जित विक्रम तेसा में अपमाने न सान बंधो विनंशति। बलि का जो तेज बढ़ा हुआ है, ऐसा विप्रबलोदर का, ऐसा ये बलि जो है विप्राणाम बले न उदर का उत्तरोत्तर फलम जस, दिन पर दिन जो बलि का बल बढ़ रहा है, ये ब्राह्मणों का बल है, शुक्राचार्य जी का बल है, तो उनकी पूजा करने से, गुरुओं की ब्राह्मणों की पूजा करने से इसका बल बढ़ा हुआ है। इस समय तो बहुत बल बढ़ा है, संप्रति ऊर्जित विक्रम, इस समय ऊर्जा बढ़ी हुई है इसकी, मतलब शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। ऊर्जित का अर्थ है बहुत बढ़ी हुई, विक्रम का अर्थ है पराक्रम। लेकिन तेसा में वह अपमाने न सानु बंधो विनंशति, एक दिन समय आएगा इंद्र कि उन ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण ही यह अपने पूरे परिवार के साथ नष्ट हो जाएगा। एक दिन यह शुक्राचार्य का अपमान करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, तो ये सानुबंध, अनुबंध मतलब संबंधी आदि के साथ ये नष्ट हो जाए, विनंशत। ध्यान रखना चाहिए कि यह बात श्रीपाद शुक्राचार्य लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, बलि महाराज का नाश कभी नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग से वे हटा दिए जाएंगे, यह बात है। भगवान वामन देव का अवतार लेंगे और सारा नाप लेंगे अपने भाई के लिए, इंद्र के लिए दे देंगे इंद्र को, तो स्वर्ग तो इंद्र को मिल जाएगा, लेकिन बलि महाराज का नाश नहीं हुआ है। लौकिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि बलि से स्वर्ग छीन लिया गया, विष्णु ने तीनों जगत छीन लिया, उसको रसातल ढकेल दिया, सुतल लोक में भेज दिया, लेकिन वास्तव में उन ब्राह्मणों का जो अपमान बलि महाराज ने किया, वह भगवान की भक्ति थी, भगवान को देने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य की बात की अवहेलना कर दिया, जिसे नाश थोड़े होगा, हुआ भी नहीं, वास्तविक में लाभ हुआ, उनको सुतल लोक की प्राप्ति हुई और सुतल लोक में भगवान उनके द्वारपाल बने, देखिए लाभ, द्वारपाल बने, और कीर्ति जो सारे जगत में फैली बलि महाराज जी को, तो अद्भुत है, सारा जगत आज तक कीर्ति गाता है, उन्होंने दान दिया भगवान को, गुरु की बात की अवहेलना करके भी भगवान को दान दिया, और एक तो कीर्ति मिली, सुतल लोक मिला, भगवान द्वारपाल बने, और अगले मनवंतर में बलि महाराज स्वयं ही इंद्र बनेंगे, क्योंकि सब अश्वमेध जग तो पूरा कर ही चुके हैं, जो इंद्र बनने का क्वालिफिकेशन है वो इसी समय पूरा हो चुका है उनका, और भागवत में लिखा गया है कि अगले मनवंतर में वे इंद्र बनेंगे। तो उस समय जो ये वर्तमान इंद्र है जिनका नाम पुरंदर है, ये उनको इंद्र पद नहीं देंगे, इंचार्ज देंगे नहीं, तो भगवान इनसे जबरदस्ती छीन करके बलि को देंगे। बलि से छीनना हुआ तो भीख मांगना पड़ा भगवान को, भीख मांग करके तब इंद्र को दिए, लेकिन ये जो इंद्र है इनको जबरदस्ती डांट करके युद्ध में हरा करके भगवान देंगे बलि को, बलि महाराज इंद्र बनेंगे, क्योंकि इंद्र की योग्यता वास्तव में बलि महाराज में है। अगले मनवंतर में वे इंद्र बनेंगे और भगवान उनके द्वारपाल बने, उनको कीर्ति मिली, सुतल लोक की प्राप्ति हुई, भक्ति में उनका नाम सबसे अग्रसर रहता है, तो क्या वो विनाश है कोई? बृहस्पति जी कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ विनष्ट हो जाएगा, तो उनका आशय इतना ही था कि ये स्वर्ग छीन लिया जाएगा और तुमको दिया जाएगा, बस इतना ही अर्थ है। बलि महाराज के विनाश का तो प्रश्न ही नहीं। यह भी इंद्र को आश्वासन देने के लिए गुरु महाराज जी की एक शैली है, तो इस तरह से बोले कि उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति जी कोई ऐसा थर्ड क्लास का सब बोल ही नहीं सकते हैं। विनाश का एक अर्थ संस्कृत में अदर्शनम होता है, अदर्शनम। जैसे जादवों का विनाश हो गया प्रभास में, तो वहां विनाश का अर्थ है, सभी यही लिखे हैं कि अदर्शनम गता है, वो सभी अदर्शन को चले गए। कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको भी विनष्ट कहते हैं। तो गुरु जी बृहस्पति जी कह रहे हैं कि बलि का एक दिन विनाश हो जाएगा, मतलब वे स्वर्ग छोड़ देंगे, उनको सुतल लोक में जाना पड़ेगा जहां कोई उनको देखता नहीं है, लेकिन देखे न देखे भगवान तो द्वारपाल बने हुए हैं उनके। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद लिखा है कि बलि ही छलन गए आप उछलाए, भगवान बलि को छलने के आ गए खुद ही छल लिए गए। बलि से तीनों लोगों का दान लिए ब्राह्मण बनकर भीख मांगकर, लेकिन बलि के दास बन गए, द्वारपाल बन गए। बलि महाराज राजा हैं सुतल लोक के और भगवान वहां के द्वारपाल हैं, सिक्योरिटी गार्ड करके खड़े रहते हैं, बलि की रक्षा करते हैं। इतना भगवान आभारी हैं अपने भक्त के, अपने सेवा से, कि वे आज तक द्वारपाल हैं बलि महाराज के और आगे भी रहेंगे। यदि बलि महाराज की इच्छा नहीं रहती है कि भगवान हमारा चौकीदार बने, लेकिन भगवान को इसी में आनंद आता है। ऐसी कथा है कि एक बार रावण गया था जीतने के लिए बलि महाराज को सुतल लोक में, सुना कि बहुत प्रचंड राजा है, पराक्रमी है, तो रावण दिग्विजय करने के लिए गया। गया तो भगवान वामन देव द्वार पर थे, तो उन्होंने देखा कि रावण आ रहा है, पैर के ठोकर से ऐसा मारा भगवान ने उसको कि वो जाकर लंका में आकर के गिरा, ये भागवत में लिखा गया है। तो इतना सुरक्षित सुतल लोक है, वहां पर बलि को कोई भी सता नहीं सकता है, कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं, कोई भय नहीं, भगवान जहां के रक्षक। रक्षक की बात छोड़ दिए, नित्य दर्शन देते हैं बलि को और उसी चतुर्भुज रूप में ही पहरा देते हैं, ये भी बहुत आश्चर्य की बात। वास्तव में बलि को छलने क्या गए खुद ही चला गए। ये भगवान का अद्भुत स्वभाव है, भगवान को कोई कुछ देता है तो उसको कई गुना लौटाते हैं, कई गुना लौटाते हैं। वास्तव में भगवान अपने हिसाब से देते हैं, देखते हैं कि यह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर इतना दिया तो भगवान भी पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं, वो शक्ति लगा देंगे थोड़ी भी तो बहुत हो जाता है। भगवान को देने वाला कभी घाटा में नहीं पड़ सकता है, वो हमेशा फायदा में रहता है, हमेशा। आज फायदा न दिखाई दे लेकिन आगे आने वाला फायदा होता है। भगवान हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, याद रखते हैं कि हमको इसने दिया, हमको इसने जल दिया, तुलसी का पत्ता दिया, फल दिया, इसने हमको पैसा दिया, इसने अपना शरीर लगाया, अपनी वाणी लगाया, तो भगवान ये सब याद रखते हैं। तो बलि महाराज के द्वारपाल बने, तो बलि का विनाश तो हुआ नहीं, उल्टे उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ भगवान के द्वारा। सब लोग प्रशंसा कर रहे थे बलि की, उस समय जब भगवान ने बांधा था। ये कह रहे हैं कि यह तो ब्राह्मणों के बल से बढ़ा हुआ है, लेकिन उनका अपमान करने से इसके बाद नष्ट हो जाएगा। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थान दर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमूर गिरवाणा कामरूपिण। इस प्रकार गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को यह मंत्रणा दिया, यह उपदेश दिया कि इस विशेष देश काल में क्या करना चाहिए। इतना बड़ा शत्रु जब आक्रमण किया है तो उसके सामने लड़ना ठीक नहीं है, यही है बुद्धि। वास्तव में ऐसा नहीं कि गुरु जी भी ललकार, हाँ हाँ लड़ो लड़ो लड़ो, भले मर मिटो कुछ भी करो, ये लड़ने का समय नहीं था। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, गुरु जी और देवता की बात क्या है, स्वयं भगवान भी बलि से लड़ने का साहस नहीं किए, भीख मांगे लेकिन युद्ध नहीं किए भगवान, क्योंकि बलि महाराज वास्तव में भक्त थे, ब्राह्मणों के सेवक थे, दानी थे, सदाचारी थे, उनके साथ भगवान कैसे युद्ध कर सकते थे। तो भगवान का नाम डूब जाता है, देखो ऐसे भक्त को मारते छीनते, इसलिए भगवान हाथ जोड़ करके भीख मांगे। तो गुरु महाराज ने भी इसी तरह की राय दिया कि तुम लोग आदर्शन को चले जाओ, छिप जाओ, भूमिगत हो जाओ और उस काल की प्रतीक्षा करो जब बलि स्वर्ग छोड़ेगा ब्राह्मणों के अपमान से। तो अपने गुरु की बात को मानकर इंद्र आदि देवता सभी काम रूप में अपनी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले छद्म वेश में स्वर्ग को छोड़ करके चले गए, पूरा प्रयास छोड़ करके चले गए, सब खाली कर दिए। बलि महाराज जब स्वर्ग पाए तो वहां कोई निवासी नहीं मिला और सब सामान, विमान, बगीचा, भवन सब कुछ जेव कहते होता है, सब कुछ जेव कहते हैं। और कुछ है, महानुभावों का कहना है कि वहां पर कुछ स्त्रियां रह गई थी, जो भी हो कुछ कहते हैं नहीं सभी लोग चले गए। तो पूरा दूसरी पार्टी का आदमी आकर के दखल किया पूरा, ऐसा देखा जाता है चुनाव वनाव के बाद ये सब पद कितने अनित्य होते हैं। यदि कोई दूसरी पार्टी जीती है तो वही सीएम भवन, वही चीफ मिनिस्टर का घर या प्रधानमंत्री का घर, फिर दूसरा आदमी आकर के रहने लगता है, घर रहता है तो सारी सुविधाएं रहती हैं लेकिन छोड़ देना पड़ता है। तो यहां तो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज होता है, स्वर्ग में बहुत काल के बाद वो घर छोड़ना पड़ता है, वो स्थान छोड़ना पड़ता है, पर छोड़ना होता है या नित्य है और असमय में। ऐसा नहीं कि कोई मध्यावधि चुनाव वहां हो गया था, अपने आप ही जाना पड़ा। एक व्यक्ति तैयारी करके स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और स्वर्ग प्राप्त करने की जो विधि थी उस विधि का पालन करके वो प्राप्त किया, हठात ऐसे आक्रमण नहीं किया, धर्म का पालन किया, यज्ञ किया, दान दिया और इसके बल से उसे स्वर्ग मिला। तो अभी एक विधि थी वास्तव में। तो देवता सब चले गए छोड़ करके। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवेशु अथ निलीनेशु बलिर वैरोचन पुरीम देवधानीम अधिष्ठाय वसन निन्ने जगत्रयम। जब देवता सब चले गए तो बलि महाराज उस राजधानी में आए और राजधानी पर अधिकार करके उन्होंने सारे विश्व को, तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वही स्थान है जहां से शासन होता है, बलि महाराज के वश में सारा विश्व हो गया। अब शुक्राचार्य जी जो साथ में ही गए थे अपने शिष्य के, तो उन्होंने सोचा, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, कि जो व्यक्ति सौ अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है, स्वर्ग का मालिक बनता है। तो उन्होंने अपने शिष्य से सौ अश्वमेध यज्ञ कराया, कराना चालू किया। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलः सतेन है मेधा नाम अनुव्रतम अयाजयम। विश्व विजयी अपने शिष्य का इंद्र पद स्थिर करने के लिए गुरु जी ने, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य सौ अश्वमेध यज्ञ कराना चालू किया। क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो भगवान कभी भी हटा सकते हैं, ब्रह्मा जी ही बर्खास्त कर देंगे, नहीं अब जाइए। यहां भी देखा गया है कभी कभी कोई व्यक्ति कहीं कंपनी में या कहीं सर्विस ज्वाइन करता है तो कुछ उसके रिक्वायरमेंट बाकी रहते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन बाकी रहता है, वो पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई करके वो क्वालिफिकेशन पूरा करके फिर स्थायी हो जाता है। तो बलि महाराज तो स्वर्ग तो जीत लिए थे लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन है सौ अश्वमेध यज्ञ करना है, तो महाविद्वान शुक्राचार्य सोचते थे कभी भी इंद्र को हटाया जा सकता है, बलि को हटाया जा सकता है। अतः अपने परम प्रिय शिष्य बलि के इंद्र पद को अस्थिर करने के लिए पहले क्वालिफिकेशन पूरा करना चालू, सौ अश्वमेध यज्ञ कराना चालू किए। यहां भी बलि यज्ञ करते थे, वहां जाकर अश्वमेध यज्ञ चालू किए। वो भी भोगों में नहीं रहे, यज्ञ करने का मतलब है तपस्या करना, भगवान की भक्ति में रहना, कीर्तन करना, रात दिन चिंतन में रहना, दान देना, यही है यज्ञ। तो बलि महाराज से यज्ञ कराया गया। सतेन है मेधानम, है मैंने घोड़ा, मेध मन मेध अश्वमेध सौ अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प किए। इसमें प्रश्न होता है क्यों ऐसा कर रहे हैं, गुरु लोग तो बड़े कठोर दिल के होते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं, वो कठोर दिल के नहीं थे, शिष्य वत्सल, अपने शिष्यों से बहुत स्नेह करते थे शुक्राचार्य या अन्य ब्राह्मण भी, शिष्य वत्सल, शिष्य के प्रति वैसा भाव होता जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति भाव होता, वत्सल कहते हैं। गाय जब नया बछड़ा देती है तो उसको दूध पिलाती है, उसको चाटती है, कुत्ते आदि से बचाती है, इसको कहते हैं वत्सला। तो शुक्राचार्य का इतना स्नेह था अपने शिष्य के प्रति जैसे गाय का अपने बच्चे के प्रति होता है। वो चाहते थे कि ये राजा बने, ये धनी रहे, ये सफल रहे, सब जगह इसकी कीर्ति फैले। तो यहाँ पर फिर प्रश्न होता है कि कभी कभी शिष्य उदंड होते हैं इसलिए भी उन पर कृपा गुरु लोग नहीं करते हैं। तब सुखदेव जी कहते नहीं, बलि महाराज अनुव्रतम, अनुव्रतम का अर्थ अनुगामित, वो गुरु जी के भक्त थे और गुरु जी शिष्य वत्सल थे, चाहते वास्तव में गुरु का स्वभाव तो चाहता है गुरु के हमारा शिष्य धनी रहे, सुखी रहे, भगवान की भक्ति करे, करें, स्वभाव होता है गुरुजनों का। और शिष्य का अनुव्रतम अनुगामी, गुरु के अनुगामी थे इसलिए ऐसे शिष्य पर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कृपा किया। ततस्तद अनुभावेन भुवन त्रय विश्रुताम कीर्तिम दीक्षुभ तन्वान सरेजे उडुरा दिवम। बलि महाराज वो सब अश्वमेध यज्ञ करने के कारण, यज्ञ के प्रभाव से, भगवत भक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में कीर्ति फैला दी, उनकी कीर्ति तीनों लोकों में गाई जा रही थी और विश्वता बहुत विख्यात कीर्ति, ऐसे सुंदर लग रहे थे, ऐसे चमक रहे थे कीर्ति द्वारा जैसे उडूरा चंद्रमा, चंद्रमा जैसे अपने धवल किरणों से सुशोभित होता है, इस तरह बलि महाराज तीनों लोकों में प्रशंसा के पात्र थे। कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा था, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। बुबुझे च श्रियम श्रद्धाम द्विज देवो द्विज देवोपलंबिताम कृत कृतमिव आत्मानम मन्यमानो महामना। स्वर्ग विजय करके और सौ अश्वमेध जग करके, वास्तव में 99 किए थे, सौवां भी पूरा होने वाला था तो सौ ही कहेंगे, सौ अश्वमेध जग करके बलि महाराज का मन बहुत उदार हुआ था, महामना मन बहुत बड़ा हो गया था, भगवान की भक्ति से पूर्ण थे। तो ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कराई गई उस स्वर्ग संपत्ति को पा करके वे उसे भोगने लगे और भोग करके स्वर्ग को अपने को कृतकृत्य मानसा मानने लगे। सुखदेव गोस्वामी की अपनी भाषा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति पावे स्वर्ग को तो खूब स्वर्ग का सुख भोगेगा। बलि महाराज को भी कह रहे कि स्वर्ग का सुख भोगने लगे, लेकिन यह उचित नहीं है, इसीलिए वो युव शब्द लगा रहे, कृत्य कृत्यम युव आत्मान, अपने को कृतकृत जैसा मानने लगे। बलि महाराज तो जानते थे कि ये स्वर्ग जो है तुच्छ है, वास्तविक सुख तो भगवत भक्ति में है, पूरा इस बात को जानते थे और उसी में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से एक बात कही जाती है अब स्वर्ग का मजा लेने लगा भोगने लगा है, वास्तविक यह बात नहीं थी, टीका में बात लिखी जाती, इसलिए इव शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या स्वर्ग पा करके बलि महाराज जैसा व्यक्ति अपने को कृतकृत्य मानेगा? कृत्य का अर्थ करने लायक और कृत का अर्थ किया हुआ, करने लायक काम को कर चुके, तो क्या बलि महाराज के जीवन में स्वर्ग प्राप्ति यही लक्ष्य था क्या? नहीं, स्वर्ग को तुच्छ समझते थे, वे भगवान के भक्ति के सुख में परिपूर्ण थे, मग्न थे, लेकिन लोक दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अब स्वर्ग मिल गया, भोगने लगे, बहुत जैसे दूसरों का वर्णन किया जाएगा वैसे वर्णन कर रहे हैं। परंतु बलि महाराज वास्तव में परम भागवत पुरुष हैं, वे भोगों में बिल्कुल आसक्त नहीं थे, हाँ वे स्वर्ग के राजा बन गए, उनके अधिकार में सारा विश्व आ गया। यहां तक तो बलि का स्वर्ग विजय दिखाया गया, अब देखिए दूसरा पक्ष है। बहुत काल बीत गया जब भगवान के भक्तों को स्वर्ग छोड़ करके हटना पड़ा। बलि महाराज तो भक्त थे, वो तो और किसी से भी बड़े भक्त थे, परंतु फिर भी स्वर्ग में जो एक परंपरा है देवताओं को रखने की, और वो लोग भी सब क्वालिफाइड व्यक्ति थे, बहुत धर्म किए थे, पुण्य किए थे, इसलिए स्वर्ग में गए थे। जैसा आपने कल सुना कि ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, पर स्वर्ग में जो गए थे देवता हैं, देवियां हैं, वे सब बहुत पुण्यात्मा पुरुष हैं, कोई पापी तापी स्वर्ग नहीं जाते। परंतु यह अकस्मात बलि महाराज विजय किए स्वर्ग पर, उन सबको हटना पड़ा। तो मुख्य रूप से जो 11 पुत्र थे माता अदिति के, वे जब स्वर्ग छोड़ दिए तो इसे माता अदिति को बहुत दुख हुआ। बलि महाराज भी कश्यप जी के ही संतान हैं, जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दीति से उत्पन्न हुए कश्यप जी के द्वारा। तो फिर हिरण्यकश्यप से प्रहलाद महाराज हुए, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो कश्यप जी के ही संतान परंपरा के राजा बने, लेकिन कश्यप जी बहुत विवाह किए थे। उनमें से कई के नाम लास्ट ईयर इस कथा में आया था। एक स्त्री का नाम था दीति, तो दीति से ये दीति की परंपरा में ये आते हैं बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पौत्र। और इंद्र अदिति के डायरेक्ट पुत्र है, आदित्य कहते हैं। 12 पुत्र ये बादल जैसा पर्वत करके बामन भगवान जन्म लेंगे, उनके अलावा 11 पुत्र थे इनके माता अदिति को। होने से इनको द्वादश आदित्य कहते हैं। तो वे जब बहुत बड़े बड़े पदों पर थे, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए, भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए, और इन्हें अदिति के पुत्रों को एक दिन स्वर्ग छोड़ देना पड़ा, तो उसके कारण हुआ क्या कि अदिति भी स्वर्ग छोड़ करके चले गए। जब सारे पुत्र चले गए और सारे वंश के लोग जब इधर उधर चले गए, तो अदिति भी स्वर्ग छोड़कर कोई दूर में ही, स्वर्ग में ही थी लेकिन दूर में एक आश्रम में रहती थी, जो पहले इंद्र के समय में जिस भवन में रहती थी नहीं रहती थी। और कश्यप जी को तो पता ही नहीं था कौन राजा बना है कौन नहीं बना है, वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। कश्यप जी को इसकी चिंता नहीं होती भी कि चाहे बलि राजा बने या चाहे इंद्र राजा बने, अपने ही परिवार के लोग बन रहे हैं, यह भी एक बात थी। और लोग भगवान की माया से परे व्यक्ति हैं, महान पुरुष, उनमें भेदभाव नहीं था। लेकिन स्त्रियों में भेदभाव होता है, मेरा जन्मा हुआ ही राजा बनना चाहिए, ये भाव था। दीति भी कश्यप जी की पत्नी थी और अदिति भी कश्यप जी की ही पत्नी। एक दिन की बात थी, बहुत काल बीत गया, इंद्र भगवान इस तरह से दुर्दशा में थे। एक दिन अवसर पा करके रात्रि के समय वे अपने माँ के पास आए, अदिति के पास। अदिति ने जब इनका शरीर देखा, सब कुछ देखा, दुबला पतला हो गए थे, कहाँ विश्व का पालन करने वाला राजा स्वर्ग का, और एक दिन इस दशा में हो गया, तो माँ का तो हृदय रोने लगा बिल्कुल देख करके दशा। और इंद्र भगवान भी एक बच्चे की तरह फूट फूट करके रोने लगे अपने माँ के सामने, एकांत में गए थे रात में, रो रहे थे खूब। वास्तव में देखिए, संसार में चाहे कोई भी आश्रय हो, कुछ भी हो, एक व्यक्ति के लिए माँ सबसे बड़ा आश्रय होती है। लौकिक दृष्टि से माँ के समान आश्रय कोई नहीं होता है, और संबंध भी होता है व्यक्ति का, वो 9-10 महीने अपने गर्भ में रखती है बच्चे को, फिर पालती है, पोसती है, छाती का दूध पिलाती है, मल मूत्र साफ करती है, खिलाती है, पोसती है, छोटे छोटे बच्चों को कई बार तेल लगाया जाता है, मालिश करती है, इस तरह से पाल पोस करके बड़ा करती है। तो माँ का हृदय हमेशा अपने संतान के प्रति दया से भरा रहता है। भगवान इंद्र एक बच्चा की तरह रो रहे थे, वे तो जानते थे कि पिताजी तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो सम है सबके प्रति, चाहे बलि महाराज हो चाहे हम है, सबके प्रति उनकी समान दृष्टि थी। और वैसे भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। जब देखिए तब लिखा गया है समाधि से उठे, समाधि से उठे, तो समाधि मतलब भगवान के लीलाओं का चिंतन करते थे, रूप का चिंतन करते थे, और ये सब मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं रहते थे। कश्यप जी हमेशा भजन में रहते थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक दूसरी जगह कथा है कि इंद्र रो रहे थे और कह रहे थे कि माँ इस समय तुम ही सहारा हो, तो माँ भी रो रहे थे बेचारी क्या करे, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि बेटा चिंता मत करो, भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। किसी तरह से समझाया बुझाया, लेकिन वो करे क्या, किसी स्त्री के लिए पत्नी के लिए सबसे बड़ा बल पति होता है, पति से ही वो जो कुछ करवाना है करवा सकती है, और पति उधर समाधि में डूबे थे, वो क्या करे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कथा प्रारंभ कर रहे हैं, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यद् अनाथवत्। इस प्रकार से जब पुत्रों का नाश हो गया, पुत्रेषु नष्टेषु, नष्टेषु का अर्थ अदृष्टेषु, जब माता अदिति को अपने पुत्र दिखाई नहीं देते थे, सब भाग गए इधर उधर स्वर्ग छोड़ करके, तो देवताओं की माता, देव माता अदिति, कितने सुंदर शब्द हैं, देवताओं की माँ अदिति पर ये तप्यत बहुत दुखी हो गई, हृदय में बहुत पाप होने लगा, दुख होने लगा कि हमारे पुत्र सब आज दुर्दशा में है, बुरे दिन में आ गए, राज धन सब कुछ छीन लिया गया। तो माँ का हृदय तो अपने पुत्रों के प्रति ऐसे ही स्नेह से भरा होता है, और इस दुर्दशा में और स्नेह उमड़ रहा था, तो बहुत दुखी रहती थी, रात दिन रोती थी, बिलखती थी, भगवान से विनय करती थी। अनाथवत पर ऐसा लगता था जैसे दीति का कोई नाथ ही नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा नाथ है, नाथ मतलब रक्षक पालक, उसका पति होता है। तो अदिति के पति हैं, वह अनाथिनी नहीं है, लेकिन इतना दुख अनुभव कर रही थी जैसे अनाथिनी हो, अनाथवत, इसलिए वति शब्द का प्रयोग किया है, वत अनाथवत, वास्तव में अनाथ नहीं थी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दो आश्रय होता है हमेशा, एक तो पहला आश्रय तो जगन्नाथ जी हैं, ये नाथ हैं, इसलिए कोई अनाथ नहीं है, और दूसरी बात है कि स्त्री के लिए पति भी जीवित है, और वो भी पति समर्थ पति है, सब तरह से समर्थ है, वो क्षण भर में कुछ भी कर सकता है, तो वह अदिति अनाथ नहीं थी, अनाथिनी नहीं थी, वो सनाथा थी, उसके पति समर्थ थे, और सबसे बड़ा आश्रय तो भगवान का है, भगवान और पति दो का आश्रय होता है किसी स्त्री के लिए, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनाथवत, ऐसे रो रही थी, ऐसे शोक कर रही थी अपने पुत्रों के लिए, जैसे लगता था कि बेचारी का कोई सुनने वाला नहीं है, और कोई इसका पालक नहीं है, रक्षक नहीं है, इसकी इच्छा पूरा करने वाला कोई नहीं है। परंतु अनाथवत शब्द से सुखदेव गोस्वामी की यही ध्वनि निकल रही है कि वास्तव में उसके नाथ भगवान हैं और उसके पति दोनों थे, इसलिए उसे ये फील नहीं करना चाहिए था कि वह अनाथनी है। लेकिन एक श्लोक के द्वारा सिद्ध होता है कि किसी पत्नी के लिए पति ही वास्तविक नाथ होता है, लौकिक जगत में वास्तविक नाथ तो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ का अर्थ जगताम जीवा नाम नाथ जगन्नाथ, ये सभी जीवों के नाथ हैं, रक्षक हैं, कोई नहीं है जिसका कोई नहीं जगत में उसका नाथ कन्हैया, जिसके कोई नहीं उसके तो भगवान हैं, और है भी तब भी तो भगवान है ही। तो इसीलिए इनको जगन्नाथ कहा जाता है, सभी जीवों के नाथ हैं। किसी को ऐसा नहीं अनुभव करना चाहिए कि हमारा रक्षक, हमारी इच्छा पूरी करने वाला, हमारा पालन करने वाला कोई नहीं है। अरे ये हैं, ये नाथ है। ये वैसे दिखाते हैं कि इनको हाथ नहीं है, लूल्हा है, लेकिन ये सारे जगत का पालन करते हैं। वो तो उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी कथा है कि क्यों भगवान के हाथ अपूर्ण रह गए। लेकिन ये जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जगन्नाथ जी हैं वास्तव में। किसी को शोक नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में, भगवान सब पूरा करते हैं। और अपने पति थे फिर भी वो बेचारी अनाथ की तरह शोक कर रही थी। अरे जिसके इतने बड़े बड़े पदों पर और बड़े सफल और दुनिया के रक्षक, पानी बरसा करके, प्रकाश दे करके, हवा दे करके, पानी दे करके, सब तरह से पालन करने वाले पुत्र थे बड़े बड़े पदों पर, वे इस दिन दशा में आ जाए तो क्यों नहीं माँ को तकलीफ होगी, माँ क्यों नहीं शोक करेगी। तो माता अदिति शोक में डूबी हुई थी। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं कि एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमो भगवान गात निरुत्सवम निरानंदम समाधेर वृतश्चिरात। एकदा दा का अर्थ है समय। एक समय कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर आए। तस्या आश्रम, यह नहीं कहा जा रहा कि अपने आश्रम में आए, क्योंकि वास्तव में इनकी तो बहुत पत्नियां थीं, तो किसके घर को अब इनका अपना घर कहा जाए। दीति का घर भी इनका ही घर था, अदिति का घर इनका ही घर था, इसलिए तस्या आश्रम सुखदेव गोस्वामी कह रहे। अदिति के आश्रम पर आए, और आश्रम शब्द सिद्ध कर रहा है कि स्वर्ग में एक किनारे किसी बगीचे में रहती होगी, जो भी बलि महाराज इनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, जैसे सुखपूर्वक रह रहा है। लेकिन जब सत्ता रूढ़ है पार्टी थी इनके पुत्रों की, तो उस समय जैसा शान शौकत घर द्वार आदि का था वो सब नहीं रहा, इसलिए इनके आश्रम का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निरुत्सवम निरानंदम। क्योंकि अपने घर को छोड़कर के दूसरी जगह गई थी, इस वहां पर अब वो घर की रंगाई पोताई श्रृंगार उंगार सब कुछ नहीं था, नहीं कोई उत्सव नहीं था, गान बजाना आदि कुछ नहीं। और निरानंदम चूंकि अपने पुत्र नहीं थे घर में, मां अकेली थी, इसलिए कोई आनंद नहीं था। निरुत्सवम निरानंदम, कोई उत्सव नहीं, कोई आनंद नहीं। ये क्यों, कहां चले गए थे, कहां थे कश्यप जी? तो ये कहते हैं समाधेर वृतश्चिरात। समाधि से विरत हुए थे, समाधि टूटी थी, कितने काल का चिरात, बहुत वर्षों तक समाधि में रह गए थे, समाधि में रह गए थे। इस तरह के लोग भगवान का ध्यान करते थे। एक प्रश्न होता है कि मान लीजिए आए भी तो ये क्या कर सकते थे, अगर मान लीजिए आ भी गए समाधि से तो अदिति के लिए क्या करेंगे? तो नहीं नहीं बहुत कर सकते, इसीलिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, भगवान समर्थ, पत्नी की इच्छा को पूरा करने में समर्थ थे, इसका अर्थ ये। सर्व समर्थ कश्यप जी समाधि से उठे थे तो वे अदिति के आश्रम पर आए। इस तरह से अन्य पत्नियों के भी आश्रम पर जाते थे, घर पर जाते थे, लेकिन इस समय स्पेशल वर्णन कर रहे हैं कि समाधि से बहुत काल के बाद उठने के बाद ही आए हैं अपने घर पर, उसके आश्रम पर। देखे सपत्नी दीन बदनाम कृता सन परिग्रह सभाजितो जथा न्यायम इदमाह कुरुद्वह। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन करें, कुरुद्वह, हे कुरुकुल का नाम रोशन करने वाले, कुरुकुल का नाम बढ़ाने वाले, तुम्हें बहुत बड़े कुल में जन्म लिए हो, इसलिए हम जो बात कहते हैं इसको तुम समझ जाओगे, और तुम्हारा इस बात में विश्वास होगा। वास्तव में भागवत समझने की योग्यता कुछ पूर्व पुण्य के कारण होती है। तो यहाँ पर कुरुद्वह शब्द का यह भाव है कि तुम मेरी बातों को समझोगे, ऊंचे वंश में जन्म लिए हो। कश्यप जी जब माता अदिति के आश्रम पर आए, माता अदिति ने उनको सबसे पहले आसन दिया, कृतासन परिग्रह। कृत आसन परिग्रह, परिग्रह का अर्थ है स्वीकार करना। सबसे पहले आसन स्वीकार किया उन्होंने। ये पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति को आसन दे। ये नहीं समझना चाहिए कि हम घर पर पति आए हैं तो जानते ही हैं कि उस कुर्सी पर बैठना है या उस चौकी पर बैठना है, तो उसको देना क्या है। नहीं, धर्म है देना। कम से कम रुमाल से पोछ करके कुर्सी तो दे सकती है ना, चाहे कोई धूल झगड़ा पड़ा हुआ है तो दे करके और कहे कि बैठिए, ये पत्नी का धर्म है। तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी को आसन दिया और सभा जितो जथा न्यायम, उन्हें स्वागत किया, स्वागत प्राप्त किए कश्यप जी। जथा न्यायम, जथा न्याय का अर्थ है जथा योग्यता, देश काल स्थिति के अनुसार जो भी पूजा है सत्कार है वो किया अदिति ने, इसको जथा न्याय कहते हैं। क्या मौसम चल रहा है, क्या फल खाने को दिया जाएगा, या कौन टाइम है, क्या खाने को, क्या बात, कैसे। अब ठंडा मान लीजिए और जनवरी में आए होंगे तो गर्म पानी दिया होगा चरण धोने के लिए, और जून में आए होंगे तो ठंडा पानी दिया होगा, है ना। इस तरह से इसको जथा न्याय कहते हैं। जैसा काल है, जैसा देश है, उसके अनुसार जैसी परिस्थिति है, पत्नी ने अपने पति का स्वागत किया। सभाजित, सभाजित का अर्थ स्वागत प्राप्त, स्वागत किया। लेकिन जब आसन पर बैठे कश्यप जी और जथा जो कि पत्नी ने सत्कार किया, खिलाया पिलाया जो कुछ किया, उन्होंने देखा सब पत्नी दीन बदनाम। देखे कि पत्नी का जो बदन है, मुख है, कुम्हलाया हुआ है, प्रसन्न नहीं है, दुबली पतली हो गई है और मुख बिल्कुल उदास है। जिसके पुत्र स्वर्ग से भगा दिए गए हैं और किसी तरह दुख में दिन बिता रहे पुत्र, वो माँ कैसे सुखी रह सकती है। बार बार पुत्रों की चिंता करके बेचारी के मुख पर मलिनता आ गई थी, उदास थी। तो अपने पत्नी के सूखे हुए मुख को देखकर कश्यप जी कुछ समाचार पूछने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। इस स्थान पर प्रत्येक पति को सीखने लायक बात दी जा रही है, उसका क्या कर्तव्य है। सबसे पहली तो बात है कि अपने पत्नी के उदास चेहरे को जब देखे कोई व्यक्ति, तो उसको उसके कारण जरूर पूछना चाहिए। क्या कारण है, कोई रोग है, किसी बात का दुख है, पैसे का अभाव है घर में, या कोई वस्तु नहीं है जो बहुत आवश्यक है घर गृहस्थी में। अदिति माता को और कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। बलि महाराज ने यह सब नहीं होने दिया था, जो भी धन चाहिए, जो कुछ भी रहे, सबकी व्यवस्था थी वहां पर। एक ही दुख था कि पुत्र सब परदेश में जीवन बिता रहे थे, स्थान छूट गया था। तो अपने पुत्रों की चिंता करके देव माता अदिति दुख में थी, प्रसन्न नहीं थी। परंतु कश्यप जी इस बात को नहीं जानते थे, जो भगवान के भजन में थे, ध्यान में थे, आए। तो यहां पर से पति के कर्तव्य का एक दिग्दर्शन कराया जा रहा है। प्राय आजकल ये शिकायत आती है, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि लोग बहुत स्त्रियों के धर्म की व्याख्या करते हैं, बताते हैं, लेकिन पुरुष का क्या धर्म है ये कोई नहीं बताता। ये प्राय ऐसा शिकायत आता है। और वास्तव में पुरुष ऐसा नहीं लापरवाह होना चाहिए कि बस दो चार बस ध्यान में ही डूबा रहे और पत्नी को इधर कपड़ा भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, घर में और कुछ नहीं है, और आकर पूछे कि क्या उदास हो। वो तो बलि महाराज का शासन था, सब कुछ कंप्लीट था, माता अदिति को किसी बात की तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो पुत्रों के कारण इतना चिंतित रहती थी कि किसी भी स्वागत को स्वीकार नहीं किया था अदिति ने, हमेशा खिन्न रहते थे। कश्यप जी अपनी पत्नी से समाचार पूछ रहे हैं, खास करके उसको दीन बदना देकर, उसका मुख मलिन था, चिंता में थे, तो समझ गए कि पत्नी किसी चिंता में है, गंभीर चिंता में है। हृदय का दर्पण है मुख, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, हृदय का इंडेक्स है। हृदय में यदि दुख होता है चेहरे पर बात झलक जाती है अपने आप, वो भी अपनी पत्नी के स्वभाव चेहरे आदि को देखे वो पति समझ जाता है। कश्यप जी समझ गए, बहुत बड़े विद्वान हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान जिनका पुत्र बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, कितना जानकार होगा। तो समाचार पूछते हैं, अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिन। प्रिय हे भद्रे, भद्रे का अर्थ है कल्याणी, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा आचरण हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है, प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं भद्रे, हे सुंदर आचरण वाले, हे सुंदर विचार वाले, कहीं इस संसार में ब्राह्मणों पर कोई संकट तो नहीं आ गया ना। अपनी पत्नी को उदास देकर सबसे पहले पूछ रहे कि कहीं ब्राह्मणों पर संकट तो नहीं आ गया। इसके बाद कहते हैं धर्म पालन में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, या लोक का कोई अमंगल तो नहीं हो गया, जनता का कुछ अमंगल तो नहीं हुआ। पति अपनी पत्नी से सब समाचार पूछ रहा है। सबसे पहले ब्राह्मणों का अमंगल तो नहीं है ये पूछ रहे, इसका कारण क्या है कि यदि ब्राह्मणों का अमंगल होगा तो वे ठीक से वेद अध्ययन आदि नहीं कर पाएंगे और जनता को धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो लोक में धर्म का ह्रास होगा। जैसे मैं कल कहा था कि धर्म है भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना, और सत्य वचन बोलना, सफाई से रहना, दान देना, इंद्रियों पर संयम करना, ये सब धर्म है। लेकिन कश्यप जी जब समाचार पूछ रहे हैं कि क्या धर्म पालन में जनता को कोई कठिनाई हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के युग में देखा जाए तो जनता को धर्म पालन में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, चारों तरफ से अधर्म का प्रचार हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि सदाचार का पालन करना चाहे, कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म के अनुसार पत्नी से प्रेम करना चाहे, अन्य तरफ दिमाग को डाइवर्ट न करे, लेकिन ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो क्या क्या इतना प्रचार हो रहा है कि सही में कोई व्यक्ति अपने धर्म पर टिक नहीं पाएगा। वो सोचे कि हमारी मति हमारी पत्नी में ही केवल रहे, तो ये बहुत कठिन बात हो जाएगी। चारों तरफ इस तरह के नग्न चित्र और सिनेमा के दृश्य, गाने सब प्रचार किए जा रहे हैं, जनता को धर्म पालन में कठिनाई हो रही है। और यदि ब्राह्मणों का मंगल होगा, ब्राह्मण दुख में रहेंगे, तो धर्म का प्रचार और प्रवचन का कौन करेगा? और धर्म जब नहीं होगा, जब धर्म की रक्षा नहीं होती है, तो जनता का नाश ही है एक प्रकार से। तो लोक का मन तीन का समाचार पूछ रहे हैं, हे भद्रे, इस लोक में कहीं विप्राणम अभद्रम न, कहीं ब्राह्मणों का अभद्र तो नहीं हो गया है, धर्म पालन में जनता को कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, या लोक का कोई अमंगल तो नहीं हो गया है, मृत्यु छंदन वर्ति न। कश्यप जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि लोक जो है, जनता मनुष्य, यह मृत्यु के हाथ का खिलौना है। छंद का अर्थ इच्छा, जैसे स्वच्छंद, मृत्यु छंदन वर्तिन, प्रत्येक मनुष्य इस जगत में यह प्राणी मृत्यु के इच्छा के अधीन है। कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु किसको मारेगा, कोई ठीक नहीं है, मृत्यु के अधीन है। तो समाचार पूछने में कश्यप जी का यह अभिप्राय है, कहीं किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं भूकंप होना या सुनामी आना और बहुत जाड़ा का प्रकोप हो जाना, युद्ध हो जाना, ये सब कभी भी कहीं भी संभव है। इसलिए समाचार पूछा जा रहा है, अपनी पत्नी की दिन दशा देख करके कश्यप जी पूछ रहे हैं कहीं किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, क्योंकि मनुष्य तो मृत्यु के इच्छा के अनुसार चलने वाला है। मृत्यु कब किसको जिलाएगी, कब मार देगी, क्या होगा, कोई ठीक नहीं है ना। किसी से समाचार पूछने पर ऐसी बात लोग पूछते हैं, तो बहुत दिन के बाद अपने गांव में कोई जाए, हमने देखा है तो कुछ लोगों के विषय में पूछते हैं कि अभी तो वो जी रहे हैं ना, बहुत कुछ आशा की जा सकती है कि अब वो बीत गए होंगे, गुजर गए होंगे, परंतु जी रहे हैं, कौन कौन लोग चले गए, क्योंकि मृत्यु के इच्छा के अनुसार जीना है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीना है संसार में, मृत्यु की इच्छा के अनुसार जीना है। और मृत्यु की इच्छा कब होगी, किसको मारने की, इसको कोई जानता ही नहीं है, मृत्यु के अधीन सारा संसार है। अतः समाचार पूछा जाता है, कैसी कैसा समाचार है, ठीक है ना, तो बताते हैं ठीक है। और आशीर्वाद में मुख्य आशीर्वाद यही दिया जाता है, कोई प्रणाम करता है, किसी की मंगल कामना करते हैं तो कहते हैं चिरंजीवी भव, बहुत दिन जियो, भगवान करे बहुत दिन जिंदगी रहे, ये कामना की जाती है और ये आशीर्वाद दिया जाता है, सुना जाता है। इस मृत्यु के राज्य में, मृत्यु जगत में इस प्रकार का आशीर्वाद बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोई ठीक नहीं कब कहां मरेगा, सब जगह तो घटनाएं होती रहती हैं, मृत्यु का सब जगह साम्राज्य है। तो कश्यप जी समाचार पूछ रहे हैं कि कहीं ब्राह्मणों का अमंगल तो नहीं हो गया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण, इस संसार में धर्म का, भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले लोगों को होना चाहिए, यदि वो नहीं होंगे तो जनता को कैसे भगवान का ज्ञान होगा, धर्म की प्राप्ति होगी, कैसे वो कर पाएगा। अब जरा विचार कीजिए, यदि प्रभुपाद जी नहीं हुए होते और उस प्रकार की सुविधा उनको सुमति मुरारजी ने नहीं दिया होता, वे नहीं गए होते, नहीं ये सब फैसिलिटी उनको मिली होती, तो कैसे वो धर्म का प्रचार कर पाते। इतना उन्हीं के अनुवर्ती या और भी उन्हीं के समान और भी जो महापुरुष हुए हैं उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको सुविधा देना, उनका मंगल रखना जरूरी है, जनता का मंगल करने के लिए, अन्य लोगों का उपकार करने के लिए, उनको ठीक से धर्म की शिक्षा देने के लिए, जीवन निर्वाह कराने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा जरूरी है, ब्राह्मणों का मंगल जरूरी है। यह ब्राह्मण से तात्पर्य है आज के युग में तो वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, उन पर कोई संकट तो नहीं आ गया ना। ये कश्यप जी पहला समाचार पूछ रहे हैं। और धर्म का अभद्र तो नहीं हुआ, धर्म का अमंगल तो नहीं हुआ, और लोक का अमंगल, क्योंकि कोई स्त्री अगर बहुत उदास है तो बेचारी इस पर उदास हो सकती है। कश्यप जी विकल्प कर रहे हैं, ये उदास इसलिए, खीन इसलिए होगी, हो सकता है ब्राह्मणों पर कोई संकट आ गया होगा, जनता किसी संकट में फंस गई होगी या धर्म पालन में कठिनाई हो रही होगी, तो इसलिए यह इतना खीन है, इस तरह समाचार पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं, अपीवा कुशलम किंचित गृहेशु गृह मेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य जत्र योगो ह्य योगिनाम। इस श्लोक में श्री कश्यप जी गृह मेधिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे गृह मेधिनी, मेधतिर हिंसाया, गृहस्थ को पांच जगह पर हिंसा करनी पड़ती है, जैसे मसाला पीसने में, पानी भरने में, भोजन बनाने में, झाड़ू देने में, कूटने पीसने में, इसलिए उसको गृह मेधी कहते हैं। गृहस्थ का धर्म है जैसे भोजन बनाना, अतिथियों को भोजन देना, बच्चों को भोजन कराना, सबको, तो हिंसा करनी ही पड़ती है उसको। भोजन बनाने में कितने कीड़े मर जाते हैं, इसलिए उसको गृहमेधी कहते हैं। तो पूछ रहे, हे गृहमेधिनी, कहीं घर में अकुशल तो नहीं है? इस घर में कोई अकुशल तो नहीं है, इसका मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु नहीं है। न धर्मस्य अर्थस्य कामस्य, तुम्हें अपने कर्तव्य के पालन में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, या घर में रुपये पैसे का अभाव तो नहीं है, और कामस्य जैसे फर्नीचर या कपड़ा लत्ता इन सब का अभाव तो नहीं है ना घर में? देखिए यहां पर अब चालू हो रहा है कि पति का क्या कर्तव्य है। घर में पत्नी को अपने धर्म के पालन में कोई कठिनाई न हो, वो ठीक से सवेरे से शाम तक जो कर्तव्य हो करे, और घर में काम भर पैसा होना चाहिए, अर्थ और काम, काम का अर्थ है और कई प्रकार की वस्तुएं, कपड़ा, भोजन और परिवार के लिए, और जो भी पलंग चाहिए या और जो कुछ चाहिए, जो काम कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के जितने भी सामान हैं उसको काम शब्द कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि घर में किसी चीज का अभाव है। कश्यप जी ने सोचा कि हो सकता है कहे कि हाँ इस चीज का अभाव है, ये है वो है, अब जाइए मैं आप शॉपिंग करके लाइए, चाहे कीजिए वो कीजिए कोई जरूरी पड़ ही जाता है ना, पत्नी कहाँ कहाँ जाएगी बाजार करने के लिए, सामान लाने के लिए। ये पति का कर्तव्य है पूछना कि तुम्हारे धर्म पालन में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है ना, तुम्हारा 16 माला जब पूरा हो जा रहा है ना, ये पति का कर्तव्य है पूछना। ऐसा तो नहीं है कि तुमको जप करने में कठिनाई हो रही है, भगवान की आरती करने में कठिनाई हो रही है, या और अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई कठिनाई, तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है ना। और अर्थस्य, और अर्थ है ना घर में, अर्थ की कमी नहीं हो गई है ना, इस तरह से पूछना चाहिए। तो पति को कितना समर्थ होना चाहिए कि पत्नी को अगर जरूरत है अर्थ की तो उसे देना चाहिए। कहीं कहीं स्थिति दूसरी होती है, यदि मान लीजिए पति को दैव जोग से कोई जाब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर अगर पत्नी को मिले तो पत्नी पालन करे, ये धर्म है। लेकिन जनरल ऐसा है कि पति पति होता है उसको ही कमाना चाहिए, पालना चाहिए परिवार को। तो अर्थ देना घर में पर्याप्त, और काम देना, काम का अर्थ है खाने पीने की चीज, सोने पहनने आदि की चीज को, ये सब काम कहते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है ना, सब ठीक है ना, मैं तुम्हारा चेहरा बहुत उदास देख रहा हूं। फिर कह रहे, अपि वा तिथो अभ्यत्य कुटुंब शक्त या त्वया गृहाद पूजिता जाता तुत्थाने न वा क्वचित। प्रिय, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम घर गृहस्थी के काम में असक्त थी, कुटुंब में असक्त थी, और उस समय कोई अतिथि तुम्हारे घर पर आकर के कोई भी सत्कार न पाकर के बिना सत्कार पाए ही चले गए घर से, ऐसा तो नहीं हुआ ना? गृहस्थ का धर्म है अतिथियों की सेवा करना, दैनिक कर्तव्य में यह एक कर्तव्य। अपि वा अतिथयो अभ्यत्य, तुम्हारे घर पर इस आशा से कोई अतिथि आए कि तुम उनका स्वागत करोगे, तो अगर मान लीजिए अतिथि यह कहे कि यदि घर पर कुछ न हो तब अतिथि का कैसे स्वागत किया जाएगा, तब कहते हैं प्रत्युत्थाने नवा क्वचित, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि तुमने अतिथि को देख करके प्रत्युत्थान भी नहीं किया। किसी अतिथि को देख करके खड़ा हो जाना और मधुर वचन बोलना, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है, इतना कह देना भी एक स्वागत है, लेकिन क्या तुमने प्रत्युत्थान भी नहीं किया, तुमने वचन से भी स्वागत नहीं किया, और उसे उपलक्षण है कि क्या तुमने जल से भी स्वागत नहीं किया, तुमने आसन भी नहीं दिया। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ यदि वास्तव में महान गृहस्थ है, वह अतिथि सेवा यदि न करे तो उसका तेज फीका हो जाता है, इस शास्त्र में लिखा हुआ है। प्रिय, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अतिथि आए, बहुवचन करें, अतिथि लोग आए तुम्हारे घर पर और गृहाद अपूजिता जाता, गृह पर आकर के बिना सत्कार प्राप्त किए ही वे चले गए, तुमने उठकर भी स्वागत नहीं किया, या उनको पानी नहीं पीना पिलाया, या मधुर भाषण नहीं किया। अब कह रहे हैं कि जिस गृहस्थ के घर पर अतिथियों का सत्कार नहीं होता है पानी के द्वारा भी, तो वो घर वास्तव में मनुष्य घर नहीं है, वो सियार के घर है। यहां पर कह रहे हैं गृहेशु जेसु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि, यदि प्रयान्ति तेनो नम फेरु राजगृहोपमः, जिन गृहस्थों के घरों में अतिथियों का सत्कार सलिलह अपि न अर्चिता, जहां पानी के द्वारा भी सत्कार नहीं होता है जिन घरों में, वे घर श्रीगाल राज के घर के समान हैं। फेरु कहते हैं सियार को, और राज मतलब श्रेष्ठ, बड़ा सियार, घर का जो मालिक है वो बड़ा सियार। जिस घर में पानी के द्वारा भी अतिथियों का स्वागत नहीं होता है वह मनुष्यों का घर नहीं है, वो श्रीगाल राज का घर है। बहुत भारी बात कह दी गई। पहले के युग में अतिथियों का स्वागत होता था, स्वागत होना चाहिए जथा योग्य जथा पात्र सलिल अपि, और कुछ घर में अगर नहीं है तो कम से कम पानी भी तो पिला देना चाहिए, नहीं है तब और चीज है तो कुछ खाने को देना चाहिए, मधुर भाषण करना चाहिए, आसन देना चाहिए, थोड़ा आराम कर लीजिए इसके बाद जाइएगा। देश काल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। कोई तर्क करने वाले तो कर सकते हैं, क्या कोई भी आवे बस सबको बैठा करके खिलावे पिलावे और ये करे वो करे, ये सब नहीं कहा जा रहा है। जो शास्त्र के सिद्धांत है वो कहा जा रहा है, लागू करना चाहिए देश काल पात्र के अनुसार, कैसे कौन है क्या कर, तो विचार रखना ही चाहिए। परंतु गृहस्थ का जो धर्म है, पति बता रहा है नाचिता सलिल, इसीलिए तो विकल्प रख रहे सलिल ही अपि, अगर घर में और कुछ नहीं है, गरीब से गरीब गृहस्थ भी चाहे तो अतिथियों का स्वागत कर सकता है, और कुछ नहीं है तो पानी है ना, अगर पानी भी न हो तो मधुर वचन तो है ना वाणी में, जीभ में, मधुर वचन से स्वागतम लिख सकता है, कह सकता है, बैठा सकता है। सलिल अपि ये उपलक्षण है, कम से कम इन सब वस्तुओं से स्वागत करना चाहिए। और भी बहुत बातें कश्यप जी बोल रहे हैं, इसको हम कल बड़े विस्तार से कहेंगे, क्या क्या कर्तव्य है पति का, किस तरह से अपनी पत्नी को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, पति पत्नी दोनों का मिलित कर्तव्य है कि इस तरह अतिथियों की सेवा करें, भगवान की भक्ति में रहें, धर्म का पालन करें। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे भागवत की, प्रसाद है।
हरे कृष्णा, कृपया करके आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े रहिए, भागवत की आरती होगी, तत्पश्चात आप लोगों के लिए प्रसाद का वितरण किया जाएगा।